में बोलिएगा प्रकृतिम स्वामवष्टाभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृत्स्ना अवश्यं प्रकृते वशात् प्रकृतिम स्वामविष्टाभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूत ग्रामिम इमं कृत्स्नात्रम् अवश्यं प्रकृते वशात् प्रकृतिम स्वामविष्टाभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृत्स्नात्रम् अवश्यं प्रकृते वशात्। इसका अनुवाद सब साथ में बोलिए। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो अपने आप में ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया एक बहुत बड़ी व्याख्यान है, जिसमें वो कह रहे हैं ये संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। तो इस संसार में कई लोग अभी नवरात्रे आएंगे तो उसमें देवी की उपासना करेंगे, जय माता की, और 16-16 किलोमीटर चढ़कर पैदल भी जाएंगे, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान उपासनाएं होंगी, परंतु संपूर्ण विराट जगत भगवान कह रहे हैं मेरे अधीन है। तो अगर हम भगवान की अधीन हो जाएं तो उनकी अधीनता में हम सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक को पकड़ ले कृष्ण को तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो अलग से किसी की उपासना करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उनका अपमान करें, उनका सम्मान कर सकते हैं वैष्णव की दृष्टि से। जैसे कि श्रीमद् भागवत में भगवान शिव के लिए वर्णन किया गया है कि निम्न गणाम यथाम गंगा, बहने वाली नदियों में से गंगा श्रेष्ठ है, देवानाम अच्युतम यथा, जैसे देवताओं में भगवान अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवानाम यथाम शंभु, शंभु वैष्णवों में शिवजी सबसे श्रेष्ठ है, पुराणानाम इदम तथा, पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सबसे श्रेष्ठ है। तो ये भागवत का व्याख्यान है कि शिवजी वैष्णव के रूप में पूजने योग्य है, ऐसे ही वैष्णो देवी वैष्णवी के रूप में पूजने योग्य है, परंतु पूरा संसार किसके अधीन है, भगवान श्री कृष्ण के। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं एक भाग से श्रीमती राधा रानी का और एक भाग से श्री बलराम जी का। कहते हैं वाम भाग से श्रीमती राधा रानी और इस दाएं भाग से श्री बलराम का प्रकट होता है। राधा रानी का जो मार्ग है इसे रूपानुग या फिर रागानुगम भाग बोलते हैं, जिसमें स्पॉन्टेनियस बिना किसी सोचे समझे भगवान से प्रेम करने लग जाए आदमी। हम जो बलराम के मार्ग को फॉलो करते हैं, दोनों ही गुरु हैं, श्रीमती राधा रानी भी गुरु हैं और श्री बलराम भी गुरु हैं, गुरु तत्व हैं दोनों। कृष्ण भी राधा रानी भी सिखाती है कृष्ण के शरण में कैसे आए और बलराम भी सिखाते हैं कृष्ण के शरण में क्या क्या सेवा करें। लेकिन जो बलराम जी का मार्ग है ये वैधी मार्ग है, श्रीमती राधा रानी का मार्ग रागानुगा मार्ग है। रागानुगा मतलब जहां पर व्यक्ति रात को नींद नहीं आती है कि सुबह भगवान का दर्शन करना है, और इस वाले मार्ग में वैधी मार्ग में अलार्म क्लॉक लगा करके सोना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है कि सुबह भगवान की आरती करनी है। तो ये दोनों मार्ग है। पर प्रभुपाद जी से किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद तो क्या फिर हम वैधी मार्ग पालन करेंगे तो क्या हम कभी रागनों का मार्ग में नहीं जा सकते? उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य तो वही है। श्रीमती राधा रानी ही गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी है, बलराम जी धीरे धीरे गाइड कर देंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब आप रागनुगा बन गए। जैसे प्रभुपाद पूरे विश्व में वैदिक भक्ति सिखाई, लेकिन प्रभुपाद अपने आप में कौन है, रागनुगा भक्तों की श्रेष्ठ शिरोमणि है, लेकिन वो सहजिया नहीं है। सहजिया का मतलब होता है जो भक्ति को बड़े सहज रूप से ले लेता है कि गोपी ड्रेस पहन ली, गोपी डॉट लगा लिए और फिर मैं क्या बन गया, राधा रानी के मार्ग का अनुगमन करने वाला बन गया, ऐसा नहीं। बलराम जी के मार्ग को प्रभुपाद ने दिया कि ये दृढ़ता निष्ठावान होकर के विधि का पालन करते हुए मंगल आरती दर्शन आरती गुरु पूजा भागवत कथा जप करना और धीरे धीरे इतना जप करो, इतना जप करो, करते करते कब आप श्रीमती राधा रानी की शरण में चले जाओ आपको मालूम भी नहीं पड़े। सहज रूप से ये मत करो कि मैं तो राधा रानी का हूं, सहजिया भाव से अब मैं गोपी हूं तो गोपी सखा भाव लेकर रखू, ऐसा नहीं। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति वैधि से रागनुगा की ओर मुड़ ही नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही वैधि भक्ति करता है भगवान से कृष्ण का यश उसे प्राप्त हो जाता है। यशस्वी, जैसे कोई लोहे की रॉड है उसको बिजली में रख दो तो उसमें भी करंट आता है ना छूने से, लेकिन लोहे की रॉड में तो करंट नहीं है, तो वो क्योंकि कृष्ण के संपर्क में है तो वह व्यक्ति भी यशस्वी हो जाता है, क्योंकि कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है, भगवान के 6 भग में से एक भग क्या है कि भगवान यशस्वी है, उनका यश कभी समाप्त नहीं होता। 5,000 साल पहले जो गीता बोली गई 5,000 साल बाद कलयुग में नजफगढ़ में बैठ करके लोग कथा सुन रहे हैं, ये यश कभी समाप्त हुआ भगवान का? लेकिन किसी हीरो हीरोइन का सोचो जो 1970 में राजेश खन्ना इतने पॉपुलर थे, आज कोई उनका भजन मतलब सॉन्ग सुनेगा? भजन तो नहीं, सॉन्ग मतलब फिल्मी सॉन्ग, अब हमें आदत हो गई भजन बोलने की। सॉन्ग सुनेगा उनका? वो कौन कौन से गाने गाते थे, जिंदगी एक सफर है सुहाना, अभी कोई सुनेगा? वो लगा यार ये छोड़ो, ये नया गाना कुछ लगाओ, कोई आज का लगाओ, मुन्नी बदनाम हुई ऐसे कुछ लगा। मैं सभी भी सोचता हूँ कैसे गाने आ गए, एक तरफ स्त्री बदनाम हो रही है और बाकी लोग नाच रहे हैं। पहले जमाने के संस्कार थे, कोई बदनाम होता था तो लोग छुपाते थे उस बात को, देखो बताओ मत बदनामी हो गई, यहाँ पर खुशी मनाई जा रही मुन्नी बदनाम हुई। तो आप सोचिए कितना हमारा चरित्र, हमारा थॉट, हमारे विचार गिर रहे हैं। अगर हम बच सकते हैं तो एक ही शरण में आके गौड़िया वैष्णव श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की शरण में आके वरिष्ठ वैष्णवों के अनुगत में आके हम बच सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। तो भगवान जब विस्तार करते हैं तो बलराम से भगवान फिर अपना विस्तार करते हैं चतुर्व्यूह विष्णु के रूप में, प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव संकर्षण। संकर्षण का फिर विस्तार करते हैं अपना तो नारायण के रूप में, जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं लोग दिवाली पे, वो नारायण अभी भी रुकते नहीं है, वो नारायण फिर अपना अद्वित्य चतुर्व्यूह के रूप में विस्तार करते हैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव संकर्षण। फिर ये संकर्षण से करुणोदक्षाय विष्णु, जिन्हें महाविष्णु भी कहते हैं, उस रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं और उस महाविष्णु से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं उनके रोमकूप से, इतनी देर के लिए जैसे एक बुलबुला पानी का आया और टप बंद हो गया, इतनी देर के लिए एक ब्रह्मांड प्रकट होता है और बंद हो जाता है, भगवान के रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे। सोचिए जरा कितनी विशाल बात, सांस ले रहे हैं भगवान ब्रह्मांड प्रकट हो गए, सांस अंदर ले रहे हैं ब्रह्मांड अंदर चले गए, और उस ब्रह्मांड के 14 लोकों में से एक पृथ्वी लोक के एक मतलब एक चौथाई भाग जिसपे जमीन है बाकी 3/4 पानी है, उस 1/4 भाग के 7 द्वीपों में से एक द्वीप एशिया, उसके भी इतनी सारी कंट्री में से एक कंट्री इंडिया, उसके भी इतने सारे 29 स्टेटों में से एक स्टेट राज्य दिल्ली, उसके भी दिल्ली के इतने सारे हिस्सों में से एक हिस्सा ये, उसके हिस्से में भी इतने सारे भक्त उसमें से मैं एक, फिर भी मैं अपने आप में अहंकार लेके घूमता हूँ मैं बहुत बड़ा हूँ, है ना? सोच करके देखे भगवान के सामने हम हैं क्या। कई संस्थाओं में प्रचार चल रहा है नर ही नारायण है, नर की औकात देखिए आपने कितनी छोटी सी है, और नारायण कौन है, कोई बराबरी है? वो विभू है हम अणु हैं, वो विशाल है हम छोटे से हैं, समुद्र है उस समुद्र की एक छोटी सी बूंद, लेकिन हम बराबर भी हैं और उनसे अभिन्न भी हैं। बराबर कैसे हैं, क्योंकि अगर समुद्र को उबाले तो उसमें से भी नमक निकलता है, और एक बूंद थोड़ा सा जल लेके उबाले तो उसमें से भी नमक निकलता है, तो हमारा स्वरूप भगवान जैसा है सत चित आनंद, परंतु भेद क्या है, वो विशाल है हम छोटे हैं, ये भेद है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने अद्वैता, ये जो फिलॉसफी है हमारी, इस माधवाचार्य की फिलॉसफी में एक और नई फिलॉसफी दी चैतन्य महाप्रभु ने, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। हम भगवान से भेद भी हैं और अभेद भी हैं। इस प्रकार से भगवान ने अपना विस्तार किया करुणोदक्षाई से गर्भोदक्षाई, हर ब्रह्मांड में भगवान अपना स्वेद जल पसीने का जल भर देते हैं और स्वयं उसमें लेटते हैं और अपनी नाभि से एक कमल निकालते हैं, उसकी डंडी के अंदर 14 लोक हो जाते हैं और फिर उसके ऊपर ब्रह्मा जी हैं, उसके नीचे 14 लोक हैं, और इन 14 लोकों के अंदर जब ब्रह्मा जी को सेवा दी जाती है, जाओ सृष्टि की रचना करो, ब्रह्मा जी को वो सेवा दी जाती है, जाइए सृष्टि की रचना करिए। आप मान लीजिए घर बना रहे हैं या मंदिर बना रहे हैं, आप अपने ठेकेदार को बुलाएं, बोले जी ठेके पे आप ये मंदिर बनाइए या ये घर बनाइए, कहेगा पहले माल तो दीजिए, सप्लाई तो करिए सामान की, रॉ मटेरियल तो दीजिए, लकड़ी चूना सीमेंट, तब तो बनाऊंगा। तो वो भी नहीं है ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी खाली सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो अगर देखा जाए तो मुख्य कारण सृष्टि के कृष्ण ही है। लोग बोलते ब्रह्मा सृष्टि करता, विष्णु पालन करता, शिव जी संहार करता, लेकिन सही मायने में विष्णु से भी पहले कौन बताया हमने, कितने पीछे, कृष्ण इस सृष्टि के मुख्य कारण है और वो सेकेंडरी कारण है, दूसरा कारण है ब्रह्मा जी, है ना। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ये लिया रॉ मटेरियल, उससे फिर हमको बनाया, तो उसको बोलते हैं महत तत्व, जो भगवान के गर्भ में रहता है। जब बाहर आता है तो उसको प्रधान कहते हैं, जैसे बच्चा माँ की गर्भ में होता है तो गर्भस्थ शिशु, बाहर आया तो शिशु हो गया, और फिर उस रॉ मटेरियल से हम सबकी रचना करी गई। उसमें भी ड्यूरासेल की बैटरी लगाने के लिए बैटरी चाहिए, खिलौना बन गया, चले कैसे, तो भगवान ही, मामेव अंशः जीव लोके जीव भूत सनातना, भगवान ने ड्यूरासेल फिट किया, अपना ही सच्चिदानंद स्वरूप सबके अंदर आत्मा रूप में फिट किया, तब हम सब चलने लग गए, बोलने लग गए, है ना। तो सृष्टि की रचना करने वाले कृष्ण, और जब भगवान अपना रजोगुण अवतार करते हैं तो स्वयंभू ब्रह्मा बन जाते हैं, जब अपना सतोगुण अवतार करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं, तीन प्रकार के विष्णु बन जाते हैं, और जब अपना तमोगुण का अपना अवतार करते हैं तो संहार करने के लिए शिव बन जाते हैं। तो देखा जाए तो शिव ब्रह्मा विष्णु के भी मूल कारण कौन है, कृष्ण, है ना। तो ये बहुत बड़ा तात्पर्य है, इसको पढ़िएगा, श्रील प्रभुपाद ने चार पन्नों में बहुत ही कम तात्पर्य लिखे हैं, इस श्लोक का तात्पर्य चार पन्नों में, तो बड़े बड़े तात्पर्य लिखे गए हैं ऐसे श्लोकों के ऊपर, नहीं इसमें तो तात्पर्य कम है, लेकिन इसी सृष्टि की रचना के ऊपर कई सारे तात्पर्य प्रभुपाद ने चौथे अध्याय में भी लिखे हैं, जिसमें बहुत सारा कुछ लिखा है, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। फिर हम जब जीव बन जाते हैं तो हमारा सीसीटीवी कौन लगाएगा, हमने क्या क्या किया, इसकी देखभाल कौन करेगा। जैसे आप होटल में खाना खाने गए, है ना, तो आप तो अपना बिल मंगा लेते हैं, खाने में ऑर्डर कर देते हैं मेन्यू में कि भाई आप लस्सी ले आओ, पूड़ी ले आओ, सब्जी ले आओ, छोले ले आओ, मंचूरियन ले आओ, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो देख रहा होता है और वो पूछ नहीं रहा होता, ना वो वेटर होता है ना वो ओनर होता है, वो कौन होता है जो देख रहा होता है लेकिन वो कहता है बाद में हिसाब किताब करेंगे, पहले खा पी लो, कौन होता है, हाँ जी, रिसेप्शन पे जो मैनेजर बैठा होता है वो देख रहा होता है कितना कितना खाया आपने, अगर एक आइसक्रीम भी सोच करके खाए कि इतना हो गया ऑर्डर, लास्ट में बोले एक आइसक्रीम और ले आना छुपके से, ये तो बिल में नहीं आएगा, लेकिन उसका भी बिल कटता है। तो अगर आप इस सृष्टि में कुछ भी डिमांड रखेंगे देवी देवताओं के आगे कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, है ना, सुख आए संपत्ति आए और कष्ट हट जाए, तो तीन डिश मांगी आपने इस होटल में आके, तो तीनों का बिल देना पड़ेगा कि नहीं। अगर बिना बिल पे किए खाना खाने आप जाओ तो क्या होगा, उस एरिया में ले जाया जाएगा जहां पर सिर्फ कुक होते हैं, किस लिए ले जाया जाएगा, बर्तन धोने के लिए। तो इस सृष्टि में अगर आपने कोई भी डिमांड रख दी उसका बिल आप ही को पे करना पड़ेगा, कैसे पे करेंगे, दुखों से, तीन तापों से, त्रिशूल दिया है शिवजी को, दुर्गा को, तीन प्रकार के दुखों से, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, दुख दे देके हमारा भुगतान भरा जाता है। जब गाड़ी खरीदते हैं लोन लेने में कितना मजा आता है, नई गाड़ी निकालने में, लेकिन प्रीमियम देने में कितना दुख होता है। तो ऐसे ही जब मांगते हो ये भूल जाते हो कि जो मांग रहे हो उसका सबका बिल देना पड़ेगा, होटल में कुछ फ्री नहीं है, इस दुखालय में कुछ भी फ्री नहीं है, भोजनालय में कुछ फ्री नहीं तो दुखालय में भी कुछ भी फ्री नहीं, जो भी मांगोगे उसका बिल पे करना पड़ेगा, और किस रूप में, दुख के रूप में पे करना पड़ेगा, परेशानियों के रूप में पे करना पड़ता है। इसलिए अन्य अभिलाषिता शून्यम का मार्ग गौड़ीय वैष्णवों ने दिया, भजन का मार्ग, तो ये मार्ग हमारा भजन मार्ग है, इसमें बड़ी दृढ़ता से व्यक्ति को हरि नाम का जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई बार लोग बोलते हैं कि हरि नाम में ऐसी क्या शक्ति है जो कि सब लोग बोलते हैं बस हरि नाम ले लो, तो नाम अपराध के अंदर लिखा गया है, 10 नाम अपराधों में से एक अपराध है हरि नाम के अंदर, कि हरि नाम को एक काल्पनिक वस्तु या साधारण समझ लेना, है ना, कि कर्म कांड के जैसे और मंत्र हैं ऐसे ही एक मंत्र है, ओम स्वाहा, ऐसे ही हरे कृष्णा बराबर नहीं है, ओम नमः शिवाय बोले हरे कृष्णा बराबर ही तो है, पहले प्रभु जी वो करते थे आजकल दोनों कर लेते हैं, ठीक है,
लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र अतुलनीय है। इसकी तुलना प्रचार के दौरान की जाती है, बाद में नाम प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से तुलना करी आप क्षमा करना, ये अतुलनीय है। हरि नाम की तुलना किसी भी चीज से नहीं करी जा सकती इस संसार के अंदर, किसी भी चीज से नहीं करी जा सकती। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके आगे पीछे ओम और स्वाहा, क्लिम और स्वाहा नहीं है। आप देखिए जितने भी मंत्र हैं संसार में कर्म कांड या उपासना के, उसमें ओम और लास्ट में स्वाहा या फिर क्लिम स्वाहा, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र में कुछ नहीं। लोग सोचते हैं बड़ा साधारण, इसमें तो कोई ओम क्लिम स्वाहा नहीं है, तो ये बड़ा, या फिर स्फट फुट खटपट चटपट नहीं है इसके अंदर कुछ, तो ये चटपटा मंत्र नहीं है, ये बड़ा साधारण सा मंत्र है ना, क्योंकि संसार में इतना उल्टा फुल्टा करके आ गए हम, तो अब हमें ये बड़ा अजीब लग रहा है। जैसे एक बार एक भक्त उदाहरण दे रहे थे कि कोई पहाड़ पे चलने का आदी हो, पहाड़ों पे चलता हो, उसको जब दिल्ली लेके आओ ना, जो हमेशा ही नीचे से झरने से ऊपर चल के जाते हैं और नहाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो उनको बड़ी आदत होती है हिमाचल आदि में जो लोग रहते हैं पहाड़ पे चढ़ना उतरना, हमें बड़ा दर्द होता है, और जो जब वो दिल्ली में आते हैं तो उनको लगता है जमीन हिल रही है, चक्कर आ रहे हैं, कोई सीधी सीधी रोड होती है, और यहाँ वाला जब वहां जाता है उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये हरे कृष्ण मार्ग बिल्कुल सीधा सीधा मार्ग है दिल्ली जैसा, और बाकी मंत्र कैसे ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे ओम क्लिम क्लाम कट पट चट पट छिट फिट करना पड़ता बहुत सारा। तो वो मंत्र हाँ उपासना मंत्र है, लेकिन उसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उसका भुगतान बिल बड़ा भारी भरना पड़ता है। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र कैसा है, कोई गलती भी हो जाए आपको भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि ये हर चीज से तीनों गुणों से परे मंत्र है, इसीलिए इसका नाम महामंत्र है। तो इस मंत्र को जपना चाहिए, बड़ी प्रगाढ़ता से इस मंत्र को जपें, जैसे भागवत में कहा गया है, अहो बतश्व पचो अतो गरियान यत जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुह्वा संसुर आर्या ब्रहनूर्चनाम गृणन्ति यते। ये श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक है, तो उसमें वर्णन है, अहो बत शपच अतो गरियान, शपच मतलब होता है श्वान को पचा जाने वाला, श्वान समझते हैं क्या है, कुत्ता, उसको भी खा के जो पचा जाए, अहो बत शपच अतो गरियान खा जाए वो व्यक्ति भी, यतः जिह्वा अगर वो गलती से अपनी जिह्वा पे अग्रे वर्तत नाम तुभ्यम, अगर अपनी जिह्वा पे भगवान का नाम ले आए, ते पुस्तपस्त जिह्वा संसुन आर्या, वो व्यक्ति संसार में ऐसा पवित्र हो जाता है जहां चलता है वहां तीर्थ बना देता है। ये कौन शपच, कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति इतना पवित्र हो जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति हरि नाम जपता है इसने अपने पूर्व जन्म में कई तीर्थों में स्नान किया, पूर्व जन्म में कई मंत्रों का जाप किया और तब जाके आज वो हरि नाम तक पहुंचा है। मैं एक प्रवचन में सुन रहा था, मुझे याद नहीं, श्रील प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, उसमें वो वर्णन करते हैं, कई लोग पूछते हैं सारे रास्ते बराबर हैं, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर आप, मतलब उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि जैसे चौक पे खड़े हो आप और किसी से पूछो कि मुझे दिल्ली गेट जाना है, कहा जी सारे रास्ते वहीं जाते हैं, तो पहुंचेगा आदमी, दिल्ली गेट का रास्ता दिल्ली गेट जाएगा, द्वारका का द्वारका जाएगा, रोहतक वाला रोहतक को जाएगा, बहादुरगढ़ का बहादुरगढ़ को जाएगा, कि ये नहीं सारे रास्ते एक ही ओर जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं अभी संसार में कि सारे रास्ते उसी ओर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जिस रास्ते का अनुगमन करेंगे उसी रास्ते से पहुंचेंगे। तो किसी ने पूछा कि हरि नाम कैसे प्राप्त होता है, तो इसी श्लोक से आपको पता चलेगा। कहते हैं वो कितना ही नीचे का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो हरि नाम लेता है तो वो इतना धन है जिसकी जिह्वा पवित्र नाम का जप करती है, उसने चाहे कुत्ते का मांस ही क्यों ना खाने वाले वंश में जन्म लिया हो, पर अब वो तीर्थ स्थानों में स्नान किया हुआ व्यक्ति हो गया, अब उसको किसी तीर्थ स्नान की आवश्यकता नहीं है, वेदों का अध्ययन किया हुआ हो गया, चार वेद जो पढ़ लेते हैं उनको चतुर्वेदी कहते हैं, तीन वेद जो पढ़ लेते हैं उनको त्रिवेदी कहते हैं, दो वेद पढ़ लेते हैं उनको द्विवेदी कहते हैं, और एक वेद जो पढ़ लेते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं। ब्राह्मण जाति में इस प्रकार से विभाजन हुआ, उनको उपाध्याय उपाध्याय बोलने लगे, क्योंकि जब गुरुकुल जाते थे चार वेद पढ़ाए गए, चार वेद में से चार नंबर आए तो चतुर्वेदी का टाइटल मिल गया, तो उनकी परंपरा चतुर्वेदी, तो हम लोग उसी में से आते हैं, पर वेद एक भी नहीं आता था, तो चार वेद पढ़ाए जाते थे, फिर चार में से तीन सुना दिए अगर गुरुकुल के टीचर को तो त्रिवेदी टाइटल मिल गया, दो सुना दिए तो द्विवेदी, और एक ही सुनाया तो उपाध्याय कहकर के, बस इन्होंने उपनयन का अध्ययन किया है ऐसे उपाध्याय कहकर उनको निकाल दिया, ठीक है तुम जाओ। तो ऐसी ऐसी परंपराएं बन गई। अभी वो जाति कारक बन गया, लेकिन था वो डिग्री, जैसे डॉक्टर की डिग्री है, अब डॉक्टर का बेटा बिना डॉक्टर की पढ़ाई के डॉक्टर कैसे बन जाएगा? ऐसी चतुर्वेदी का अगर बेटा है, चतुर्वेद पढ़ने के बाद ही चतुर्वेदी बन सकता है, त्रिवेदी का बेटी त्रिवेदी बनेगा। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कोई व्यक्ति हरि नाम तक पहुंच गया तो इसने अपने पूर्व जन्मों में ऐसे ऐसे काम किए, पता है कैसे? जब व्यक्ति शुरुआत में पशु योनि से मनुष्य योनि में आता है तो वो नास्तिक होता है। तो अभी संसार में 36% नास्तिक हो चुके हैं, तो ये कौन है? पशु योनि से आए हुए व्यक्ति है ना, पशु खाते हैं, पशु घात करते हैं और फिर उनका शरीर पशु रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब नास्तिक से आएंगे तो नास्तिकवाद से धीरे धीरे अगला जन्म जब होगा, सुन सुन के किसी भक्त की कृपा होगी, कभी गलती से सुन लिया कुछ, तो अगले जन्म में सूर्य उपासक बनते हैं, सूर्य को जल चढ़ाएंगे। देखा है ना, खड़े होकर नहाने वाला टॉवल पहन के जल चढ़ाते रहते हैं, ये सूर्य उपासक बन जाएंगे, सूर्य नारायण की पूजा करेंगे। उसके बाद जब सूर्य नारायण की पूजा के बाद अगला जन्म होगा तो फिर सूर्य नारायण के बाद ये पहुंच जाएंगे गणपति बप्पा मोरिया चार लड्डू चोरिया। तो गणपति बापा की पूजा करने लग जाते हैं, है ना। इस साल गुजरात ने गणपति विसर्जन मना कर दिया तो लोगों ने कूड़े के ढेर में गणपति फेंक दिए, इतना ढेर था, वीडियो आया आप देख के हैरान हो जाएंगे, गणपति का ढेर कूड़े में पड़ा हुआ था, हजारों लाखों गणपति कूड़े में, क्योंकि साबरमती में फेंकने से मना कर दिया गुजरात में, क्या विसर्जन नहीं होगा तो क्या करें, गणपति कूड़े में पड़े। अब घर में मतलब गणपति के रखने की जगह नहीं थी लोगों के, बोले भैया बहुत दिन पूजा कर ली, चार दिन सात दिन, अब तुम जाओ बस बहुत हो गया, गणपति बप्पा मोरिया चार लड्डू चोरिया, अगली बरस तू फिर से, अब की बरस तू जल्दी जा, भेज देते ऐसी गाना गाते हैं, अब की बरस तू जल्दी जा, जल्दी भेज देते उनको। तो ये गणपति पूजा अगर किसी ने श्रद्धावान होकर कर ली, श्रद्धा से मतलब वो किसी बड़े गणपति मंदिर का पुजारी है, उपासक है और बड़ी श्रद्धावान गणपति मंत्र करता है, अगले जन्म में गणपति पापा कहेंगे अब तू है ना मेरी मम्मी की पूजा कर, तो फिर वो अगले जन्म में किसका उपासक बनेगा? दुर्गा का, पार्वती का, काली का। और फिर वो दुर्गा का एकदम श्रद्धावान भक्त बन जाएगा तो फिर अगली सीढ़ी में दुर्गा माई कहेंगे अभी मेरा कर लिया ना, अब अगले जन्म में मेरे पति देव का पूजन करो, तब फिर वो शिव जी का निष्ठावान भक्त बनेगा, अजी हम तो केदारनाथ जाते हैं, हम तो है ना मतलब शिव ही सब है, शिवो हम, मैं ही शिव हूं। एक बार हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज कह रहे थे, मैं एक जगह कथा कह रहा था और बीच में एक व्यक्ति बैठा बैठा जोर से बोल रहा था शिवो हम शिवो हम, फिर ये कुछ कहते थे कहते शिवो हम, तो महाराज बोले, मैंने कहा मैं कथा बाद में कहूंगा पहले शिव जी को हटाएंगे। तो बोले शिवजी नहीं है इसका तो ये नाम है, बोले इतनी देर से कह रहा है ना शिवो हम, मैं ही शिव हूं, अगर यही शिवजी है, शिवजी को हटाइए तब कथा होगी। तो महाराज बोले मुझे बड़ा अजीब लगता है ऐसा सुनकर के लोग शिवजी मैं हूं ये पूजा कर रहे हैं, मैं ही शिव हूं, मैं ही नारायण हूं, गलत मार्ग का अनुगमन कर रहे हैं लोग। शिवजी का अगर निष्ठावान भक्त हुआ, उसने कांवड़ तो उठाई लेकिन बीच में कोई झंझट नहीं किया, लड़ाई झगड़े नहीं किए, आजकल कांवड़ के नाम पर डिस्कोथेक चल रहा है, गणपति के नाम पर, शिवजी के नाम पर, दुर्गा के नाम पर आजकल लोग जो कर रहे हैं नवरात्रे या जो भी है, ये वैष्णव विधि नहीं है जिस तरह से हो रहा है, और वो गणपति के लिए बोल रहे हैं, गणपति से पूछ रहा है कोई गाने में कौन हो तुम, तो कहता है मेरे पापा का नाम है शिवजी, ऐसे करके कोई गाना आया है ना। ये गणपति इंट्रोडक्शन ऐसे देंगे, संस्कृत भूल गए, श्लोक भूल गए, जिन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करी वेदव्यास के कहने पर, वो गणपति जो है ना वो बोलेंगे मेरे पापा का नाम है शिवजी, हैं ऐसे गाने बने हुए। कांवड़ इस पे चल रही है आजकल, कांवड़िए जो है वो सभी प्रकार के नशे भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सदमार्ग का अनुमान करे, पुराणों के हिसाब से कांवड़ लेके जाए और शिव पर आकर गंगा जल चढ़ाए तो शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे, तो अगले जन्म उसको देंगे कि अब तुम भगवान कृष्ण के भक्त बनो, मेरे प्रभु के भक्त बनो। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। जितनी भी आराधना है पार्वती को शिव जी कहते हैं, उसमें से सबसे बड़ी आराधना है विष्णु आराधना, और उस विष्णु से भी बड़ी आराधना क्या है, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम, भगवान से जुड़ी हुई तदीय वस्तुओं की अर्चना करना, वैष्णवों की, प्रसाद की और भगवान के नाम की। ये सबसे बड़ी उपासना। तो भगवान कृष्ण के भक्त भी बन जाएंगे, ऐसा भी है, भगवान कृष्ण के भक्त भी हैं गुजरात में, जय श्री कृष्णा करके धंधो कैसा चल रहा है भाया है? उनको पैसे से मतलब है, भगवान की पूजा इसलिए करते हैं, जितना धन बढ़ता है कहते हैं अरे ठाकुर की बड़ी कृपा है, और लॉस हो जाए तो ठाकुर ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया भाई, ठाकुर ही जिम्मेदार है हर चीज का। तो ये जो चल रहा है ना, ये भक्ति नहीं है। अगर सही मायने में कृष्ण भक्ति कर ली तो उस व्यक्ति का अगला जन्म होगा जब कृष्ण भगवान उसको हरि नाम का भक्त बनाएंगे। तब इसमें एक प्रश्न हो सकता है, कोई व्यक्ति नास्तिक है तो नास्तिक व्यक्ति कैसे भगवान का नाम जप करेगा, अभी तो उसको कई जन्म लेने पड़ जाएंगे, है ना। तो इसमें आचार्यगण वर्णन करते हैं कि किसी मंजिल में, घर की मंजिल में 10 मालों की मंजिल है, उसमें 10वें फ्लोर पर हरि नाम है, और अभी आप नास्तिकवाद 0 फ्लोर पे खड़े हो, ग्राउंड फ्लोर पे। अब दो रास्ते, या तो सीढ़ी से जाओ या तो लिफ्ट के अंदर घुस जाओ, बटन दबाओ 10वां फ्लोर सीधा ऊपर चले जाओगे। अब आप कौन से मार्ग को चुनना चाहोगे, सीधा लिफ्ट पे बटन दबा के 10वें पे जाओगे या फिर इस क्रम से जाओगे, नास्तिक फिर सूर्य नारायण फिर गणेश जी फिर पार्वती फिर शिव जी फिर कृष्णा फिर हरिनाम, किसमें कौन से मार्ग से जाओगे? तो जो समझदार है, जिनकी बुद्धि सुमेधसा, जो सुमेधा बुद्धि है, जिनकी बुद्धि सही है, वो लिफ्ट के द्वारा जाते हैं, सीधा बटन दबाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मैं सोच रहा था कि हरि नाम पर जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, आज अंतिम हरि नाम दिवस पर हरि नाम पर जितने प्रश्न हैं, गुणगान तो हमने पूरा हफ्ता गाया। ये जो हरि नाम दिवस शुरू हुआ ये उस दिन से शुरू हुआ जब शिला प्रभुपाद पहली बार बोस्टन हार्बर पहुंचे थे। लोग बोलते हैं अमेरिका पहुंचे, लेकिन अमेरिका में बोस्टन पहुंचे, लेकिन बोस्टन से प्रभुपाद अंदर नहीं गए अमेरिका में, बोस्टन से दोबारा फिर जहाज पर बैठे और फिर आगे की तरफ गए, बोस्टन पर एक दिन मतलब उन्होंने टहला खा ली। तो जब बोस्टन टच किया उस दिन का दिन था 17 सितंबर 1965। वो दिन जो है, जिस दिन बोस्टन टच किया, अमेरिका के बंदरगाह को टच किया, वो दिन कहलाता है होली नेम डे, कि आज प्रभुपाद जी हरि नाम देने के लिए अमेरिका आए। लेकिन फिर धीरे धीरे इसके मतलब इसका सेवा करते थे हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी, वो देखते थे कि पूरा हरि नाम दिवस पूरे इस्कॉन में वर्ल्ड वाइड बनाया जाए। पर हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज के भगवत गमन समाधि नित्य लीला प्रविष्ट होने के बाद हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज को ये सेवा मिली कि आप होली नेम डे बनाए, होली नेम दिवस बना, हरि नाम दिवस। फिर हरि नाम दिवस से धीरे धीरे ये हरि नाम हफ्ता बन गया, क्योंकि इसी के अंदर हरिदास ठाकुर का अपीयरेंस आता है, डिसअपीयरेंस आता है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस आता है, प्रभुपाद जी का आना है, विश्वरूप महोत्सव होता है, श्रील प्रभुपाद का संन्यास दिवस आता है। तो क्या जब रोज ही कुछ ना कुछ इवेंट है तो एक दिन क्यों बनाया जाए, पूरा हफ्ता होली नेम वीक बनाया जाएगा। तो कुछ आचार्य बोलते हैं अभी थोड़े समय में होली नेम मंथ हो जाएगा, जैसे मैराथन हो गया है ना, वन डे मैराथन था, क्रिसमस पे शुरू हुआ था, फिर वो मैराथन वीक हुआ, फिर मैराथन मंथ हुआ, अभी तो 2 महीने पहले से शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही हरिनाम महीना हुआ करेगा और फिर पूरा वर्ष हरिनाम, देखा जाए तो पूरा वर्ष ही करना है हमको, है ना। तो ये हरिनाम के ऊपर प्रश्न लोग पूछते हैं, भगवान ने क्या गीता में कहा कि जप करो, भगवान तो कह रहे मन मना भगवत भक्तो मदियाजी माम नमस्कारो, भगवान ने कहा मन में मेरा स्मरण करो तो हम ध्यान करेंगे, ध्यान योग। गीता का कोट करते श्लोक दिखाते हैं, 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है, मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कारो माम एवेश सत्यम ते प्रति जानो प्रियसी में। तो आपको उनको बोलना चाहिए भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान खुद कहते हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, जितने भी संसार में यज्ञ हैं उसमें जप यज्ञ मैं हूं। अगर भगवान श्री कृष्ण को पूछना है तो भगवान ने गीता में कहा 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में, यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, मैं जप यज्ञ हूं, ये बोला भगवान ने जप अर्जुन को बोला जप करने के लिए, मैं जप हूं। अगर आप मुझे करते हो अभिन्नत नाम नामिनो, मुझ में और मेरे जप में कोई भेद नहीं है। तो कई लोग कबीर जी के बारे में बोलते हैं, है ना, कबीर जी ने बोला है, क्या बोला है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डार के, मन का फेर। मन का मतलब होता है बीड, एक माला का मन का। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि माला फेरत जुग गया, कई युग बीत गए माला घिसते घिसते, गया न मन का फेर, मन में बहुत गड़बड़ चल रही है, अनर्थ भरे हुए हैं, तो फिर क्या करें, कर का मन का डार के, कर का मन का फेंक दो, और मन का फिर कबीर जी ने तो माला मना करा। फिर आप लोग कैसे माला के लिए बोलते हैं, भगवान ने तो 5000 साल पहले बोला, कबीर जी ने तो अभी बोला, रिसेंटली बोला, 500 साल पहले बोल दिया। तो उन लोगों को उत्तर देना चाहिए, पहले जाकर कबीर जी को पूरा पढ़ो, कबीर जी को पूरा पढ़ो, एक लाइन मत उठाओ, जैसे गीता में उठा लेते कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है, लेकिन ये नहीं पढ़ते कौन सा कर्म का अधिकार है, भक्तिमय कर्म का। करे कर्म ही पूजा है, तो किसी का मर्डर कर देना भी तो कर्म है क्या, वो पूजा है? किसी का रेप कर देना भी तो कर्म है क्या, ये पूजा है? पूजनीय कर्म, सकर्म विकर्म अकर्म, चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं अकर्मण्या ही बोद्धव्यम, कौन सा कर्म करने योग्य, अकर्म करना है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर्म करने हैं। इसलिए भगवान ने 3रा अध्याय दिया कर्मयोग, 5वां अध्याय दिया कृष्ण भावना विविध कर्मयोग। बताया अभी कर्मयोग बोल दिया, लोग कर्म करते रहेंगे, बोलेंगे यही योग है कर्म करना योग, इसलिए 5वें अध्याय में कृष्ण भावना विविध कर्मयोग, कृष्ण भावना में कर्म कर। तो कबीर जी को पूरा पढ़ेंगे तो कबीर जी ने और भी कुछ कहा है, क्या कहा है पता है? जब किसी व्यक्ति ने कबीर जी की बात सुन के माला छोड़ दी, तो कबीर जी ने देखा आसपास के इलाके के सभी लोग माला छोड़ के बैठ गए, बोल रहे हैं कि जो अनगिनत देता है उसका क्या गिनना नाम, ऐसे करके मैसेज भेजते हैं। अरे वो तो 56 भोग खाता है दिन में 3 बार, आपको एक प्लेट प्रसाद एक्स्ट्रा खिला देंगे उल्टी हो जाएगी, आपको कपोच आ जाएगी, डाइजेशन, फिर वो हाजमोला खाते फिरोगे दर्द। आप भगवान से क्या बराबरी कर रहे हो? वो अनगिनत देता है, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन हम जीव हैं, जीव को गिन के काम करना है, रोटी गिन के खानी है, दवाई गिन के खानी है। डॉक्टर को बोला कभी जाकर के कि यार क्या ये ले रहे हो, 2 सुबह खाओ 2 शाम को, अनगिनत देने वाले की दवाई अनगिनत खाएंगे, खा लो पूरी शीशी एक बार में, ऐसे तो नहीं करते। तो आप सोचो अगर, तो कबीर जी ने ही बोल दिया, क्या बोला, माला मन से लड़ पड़ी, माला किससे लड़ गई, मन से, माला मन से लड़ पड़ी, हरि बोल, माला मन से लड़ पड़ी कि क्यों बिसराए मोए, क्यों मुझे बिसरा देता है, और बिना शस्त्र का सूरमा कभी लड़ता देखा कोई, किसी सूरमा को देखा है बिना शस्त्र के लड़ाई करना निकल जाए, ये भी कबीर जी ने बोला। ये पढ़ो कि माला मन से लड़ पड़ी, माला ने मन से लड़ाई करी है क्या, कि क्यों क्यों भूले मोए, मुझे क्यों बिसराता है, मुझे क्यों भूलता है, बिना शस्त्र का सूरमा कभी लड़ता देखा कोई, कभी लड़ता देखा है। माया से लड़ना है तो ये 108 बुलेट की गोली लेनी पड़ेगी अपने हाथ में, और रोज चलानी पड़ेगी ऐसे उंगली निकाल के गोली की तरह, अरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, ऐसे गोली चलानी, अब तभी तो सूरमा बनेंगे, सूरमा, बिना शस्त्र का सूरमा कभी लड़ता देखा कोई, कोई बॉर्डर पे चला जाए बिना बंदूक लिए, बोले सॉरी मैं तो लाया नहीं, वो ऊपर वाला अनगिनत देता है तो हम भी अनगिनत गोली लेके आए, ऐसा थोड़ी, बंदूक लेके जानी है अपने हाथ में, माला बंदूक है, ये भी कबीर जी ने बोला। और कबीर की खुद की माला रखी हुई है राजस्थान में, और लोग उनको देखने जाते, 1000 मनके की माला, 1000 मनके की, उनके रामानंदी संप्रदाय गुरु जी ने दी थी, उनका मंदिर भी है किसी ने बताया मंडावर में राजस्थान में, सीता राम जी का वहां मूर्ति भी है उनकी, विग्रह स्थापित अपने हाथ से करे हुए। तो ये क्या है ना, आधा अधूरा ज्ञान है। जैसे मैं पढ़ रहा था, कई शास्त्रों ने भगवान के नाम को भी बदल दिया है ना, भगवान का नाम कलयुग में अवतार है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सर्व जगत निस्तार, इस पूरे जगत को शुद्ध करने के लिए एक ही चीज आई है। हरी बोल प्रभु, थोड़ा बाहर घुमा लो इसको ना, सबको सुनने नहीं देगा वरना। कली काले नाम रूपे कृष्णस्तु अवतार, कृष्ण का अवतार किस रूप में हुआ है, नाम के रूप में, अब बताओ। और जगत निस्तार करने के लिए चेतन महाप्रभु कहते हैं बस एक ही रास्ता है, हरि नाम। लेकिन करना कैसे है, श्रद्धावान होकर के। जैसे एक बार एक मंदिर का निर्माण चल रहा था, और मंदिर निर्माण में गरुड़ स्तंभ के ऊपर एक भगवान की मूर्ति लगनी थी, जो मूर्ति बनाने वाला था मूर्तिकार, उसने पूरी रात मेहनत करके मूर्ति बनाई, और जब मंदिर उद्घाटन का समय आया तो उसने मना कर दिया, प्रभु जी ये मूर्ति नहीं लग सकती है। तो मंदिर के पुजारी भक्तगण आए, बोले क्यों नहीं लग सकती मूर्ति भाई, क्या गड़बड़ हो गई? कहा गलती से इसके मुंह पे ना एक स्क्रैच आ गया है, एक स्क्रैच, ऐसे बस एक निशान आ गया है। तो हम मूर्ति लगाएंगे, अगर ये 100 फुट ऊंचा जो स्तंभ है इस पे जब लगाएंगे तो ये स्क्रैच भगवान का दिखाई देगा। तो सब लोग बोले नहीं, भगवान का दिखाई थोड़ी देगा, इतनी ऊंचाई से नहीं दिखाई देगा। बोला लेकिन भगवान पे तो स्क्रैच रहेगा ना, वो तो क्या फर्क पड़ता है। भक्त मना कर रहे थे लगा दो, जो बनाने वाला था वो कह रहा था मत लगाओ, क्योंकि स्क्रैच है। भावना का भेद है। हरि नाम तो जप रहे, नाम तो लय पर नाम नहीं आए। रोज बोल रहे हरे कृष्णा लेकिन वो नाम ही नहीं आ रहा। जैसे एक बार एक कपोत और कपोती की कथा आती है। कपोत और कपोती ने प्रेम विवाह किया, लव मैरिज, और अपने बच्चों को सिखाया कि यहां पर शिकारी आएगा, वो दाना डालेगा, तुम जाल में मत फंसना। तो बच्चों ने ये गाना मान लिया, जैसे लोरी होती है ना, शिकारी आएगा वो दाना डालेगा, तुम जाल में मत फंसना। एक दिन शिकारी आया, उसने जाल फैलाया फैलाया, दाने भी डाले, ये खाते भी जा रहे दाने, जाल में फंसते भी जा रहे हैं, पर क्या गुनगुना रहे हैं, शिकारी आएगा और जाल डालेगा, दाना डालेगा, तुम जाल में मत फंसना, लेकिन फंस गए ना। तो नाम तो लें पर नाम के मर्म को नाम नहीं आए। कभी नाम आया कहां? एक शुद्ध नाम आ जाता तो हम लोग यहां पर अपनी अनर्थों से स्ट्रगल थोड़ी कर रहे होते हैं। कहते हैं हम तो हरि नाम जब 2-4 साल कर लेते ना, हमें अब ये यश हो जाता है, ये सम्मान की दृष्टि आती, हम तो पुराने भक्त हो गए। पुराने भक्त के लिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मान प्रतिष्ठा जैसे सूकर विष्ठा। मान प्रतिष्ठा कैसे है? सूकर की विष्ठा, विष्ठा मतलब सूअर का मल। लेकिन सूअर का मल ही क्यों कहा उन्होंने, ये क्यों नहीं कहा मान प्रतिष्ठा जैसे स्वान विष्ठा, मान प्रतिष्ठा जैसे बैलेर विष्ठा, सूकर विष्ठा ही क्यों कहा? कुछ ये अपॉइंटमेंट लिया सुअर ने, कोई क्वालिफिकेशन डिग्री चेक हुई, क्या गौड़ी संप्रदाय ने सुअर को ही क्यों अपॉइंट किया कि सूकर विष्ठा? जानते हैं इसके पीछे क्या मर्म है? भजन रहस्य में बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, सूकर विष्ठा इसलिए कहा क्योंकि सूकर सुअर समग्र संसार की मल को खाता है ना, लेकिन अपना मल वो भी नहीं खाता, उसको भी रिजेक्ट कर देता है। मल खाने वाला प्राणी भी अपना मल नहीं खा रहा, इतना निकृष्ट मल है वो, इसलिए का सबसे नीचा जो है उस मल से व्याख्यान करो। किसी और के मल से कर देंगे बोले तो इसको तो खा लेता है सुकर, लेकिन सुकर का मल कोई नहीं खाता, वो खुद भी नहीं खाता। तो प्राण प्रतिष्ठा जैसे सुकर रविष्ठ। और आदमी हरिनाम 4-5 साल जपता है और अपने आप में वो क्या समझने लगता है, मैं तो वरिष्ठ हूं, है ना, और फिर वो नियंत्रित करने वाला नियंता बन जाता, जबकि भगवान कहते हैं कंट्रोलर तो मैं हूं, तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हो। और इसी भूल के कारण अनेक लोग भक्ति मार्ग भजन मार्ग से भ्रमित होकर डिविएट हो जाते हैं। आप देखेंगे नया भक्त नहीं छोड़ता, पुराने वाले ज्यादा छोड़ जाते हैं। इसका कारण है मान प्रतिष्ठा के अंदर फंस के वो सुकर विष्ठा है। हरि नाम तो ले पर नाम नहीं आए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये कर देना मैनेजमेंट, हरे कृष्ण कृष्ण, कभी नाम ध्यान से किया ही कहां? शुरुआत में किया, उससे आज बचे हुए हैं। हरि नाम बड़े ध्यान से लेना पड़ेगा। तो यहां पर बोलते हैं नारद पुराण के अंदर आया है जप तो हरि नामानी स्थाने शत गुण आधिका। कहते हैं जप करना जो है, अगर करना है उससे भी अच्छा है उच्च स्वर से किया गया जप, मतलब कीर्तन। तो जब हरि नाम होता है ना, उसमें भी कई लोग माला लेके घूम रहे होते हैं, बोले 16 माला पूरी नहीं हुई, तो माला करते हैं हरि नाम निकल रहा होता है उसमें जप कर रहे होते हैं, साइड में पेड़ों के नीचे से निकल रहे होते हैं और जप कर रहे होते हैं अपना। लेकिन यहां लिखा है जप तो हरि नामानी स्थाने शत गुण अधिका। शत गुण 100 गुना अधिक फल देगा। अगर आपको अपना हरि नाम सुधारना है, जप सुधारना है, तो हरि नाम यात्राओं में जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए। जब जैसे बोला जाए ना हरे कृष्णा, तो ऐसे नहीं हरे कृष्णा जोर से बोलना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे ऐसे। अभी देखा तुम कितना एकदम प्योरिटी लगने लगती है ना, ये जोर से किया गया उच्च स्वर से षड गुण 100 गुना अधिक। नारद पुराण का श्लोक है, नारद पुराण में लिखा 100 गुना अधिक फल मिलेगा। तो कई लोग बोलते हैं जरूरी है हरे कृष्णा जपना इतना लंबा है, इसमें तो एक माला करने में 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट, कई लोगों को आधा आधा घंटा लगता है शुरुआत में। कह रहे कोई और साधारण मंत्र बता दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण शरणम ममा, ये मंत्र भी तो भगवान कृष्ण के हैं, हरि नाम ही तो बोला, ये कहां बोला कि हरे कृष्ण ही करना है। तो चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इन चार युगों के चार मंत्र हैं जो तारक मंत्र कहलाते, तारने वाले मंत्र। तो सुनिए सतयुग का क्या मंत्र है, शास्त्र में बताया गया है। ब्रह्म महामंत्र अनंत संहिता नामक ग्रंथ में चारों युगों के मंत्र दिए, अनंत संहिता के अंदर। अनंत मतलब भगवान अनंत जो है, अनंत चतुर्दशी बनाते हैं ना, भगवान शेषनाग। बलराम जी बता रहे हैं सतयुग में है। बोलिए मेरे साथ में, नारायण पर वेदा, नारायण पर अक्षरा, नारायण पर मुक्ति, नारायण पर गति। ये नारायण का श्लोक था। सतयुग में अगर कोई बोलेगा तो उसको भगवान विष्णु की प्राप्ति होगी, भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। त्रेता युग जब आया भगवान राम का, तो उसका मंत्र क्या था, बोलते हैं सब साथ में, राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदना, कृष्ण केशव कंसारे, हरे वैकुंठ वामना। अब इसमें कौन कौन का नाम आए, वामन, मधुसूदन, कंसारे, कंस को मारने वाले, कंस के आरी, कंस आरे, कंस के दुश्मन। कौन से युग में, त्रेता युग में है। और लोग बोलते हैं द्वापर में कृष्ण आए तो पहले पहले कैसे आप बोलते हो राम से, रामचंद्र जी के जमाने में लोग ये मंत्र करते थे, मधुसूदना मुकुंदा कृष्ण सारे कृष्ण आरे। सोचिए अनंत संहिता के अंदर वर्णन है, हर युग का एक मंत्र है। फिर द्वापर युग आया जब भगवान श्री कृष्ण हरि प्रकट होते हैं, तब ये मंत्र है, हरे मुरारे मधु के टभारे, गोविंद गोपाल मुकुंद शोरे, यज्ञेशे नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रयं मां जगदीश रक्षः। जगदीश रक्षा करिए हमारे, निराश्रय, मेरा कोई आश्रय नहीं है, आप ही मेरे प्रभु आश्रय हैं। ये कौन सा युग था, द्वापर युग। ये मंत्र बोलते हैं तब तारक मंत्र तरता है व्यक्ति, है ना। तो बोलते हैं जब कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, तो कौन सा मंत्र करना है, तो इसका वर्णन कली संतरण उपनिषद में दिया गया, इति षोडक शक नामनम कली कलमश नाशनम नत परतरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। लेकिन कली संतरण उपनिषद की कुछ प्रतिलिपियों में लिखा है इति षोडक नामनम, मतलब इसमें 16 नाम होने चाहिए। कली कलमश नाशनम, कलयुग के कल का कलमश का नाश कर देगा। नत परतर उपाया, इससे बढ़कर परतर और कुछ भी नहीं है। परतर मतलब ऊपर, है ना। जैसे भगवान बोलते हैं सातवें अध्याय के सातवें श्लोक में, मत परतरम नान्यत किश्चित अस्ति धनंजय। परतर मतलब मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, है? नत परतर उपाया सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों ने इस बात को बताया। तो कौन सा मंत्र कली संतरण में लिखा है, कोई लोग बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ऐसी प्रतिलिपियां भी हैं। लेकिन इसका मूल क्या है, पहले हरे कृष्ण आएगा या हरे राम आएगा, इस पे कई तर्क है, कई प्रकार के तर्क। लोग बोलते हैं राम जो है ना वो शुद्ध, क्योंकि वो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो राम अगर पहले बोलोगे तो नहा धो के सुबह उठकर बैठना पड़ेगा, और फिर कृष्ण जो है वो तो लीला पुरुषोत्तम है, तो बिना नहाए धोए नियमते स्मरणे न कालम, अगर कृष्ण पहले लगा दोगे तो फिर क्या होगा, आप कभी भी नाम जप सकते हो हरे कृष्ण, फिर कभी अगर हरे राम करोगे तो गायत्री की तरह उठकर सुबह नहा धोकर के तिलक लगा के भगवान के मंदिर में करना, ऐसा तर्क देते हैं, सच्चाई नहीं, ऐसी तर्क है, सच्चाई नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं राम त्रेता युग में आए, कृष्ण द्वापर में आए, इसलिए राम पहले आएंगे कृष्ण बाद में, है ना। कुछ लोग बोलते हैं हरे इसलिए है क्योंकि राधा रानी पीत वर्ण है, कृष्ण श्याम वर्ण है, दोनों रंग मिला तो काला पीला तो ग्रीन बनता है, इसलिए हरे लगाते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे रंग के हो गए ना क्योंकि राधा रानी के संग में आ गए, तो गौड़िया वैष्णव में जब आए तो राधा कृष्ण मिल के आए, तो इसलिए वो हरे रंग के, हरे कृष्ण इसलिए इन्होंने हरे कृष्ण, ये तर्क है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर इनको बोलते हैं अप संप्रदाय, जो ऐसी चर्चा करते हैं ना, उनको बोला गया क्या, वो ढोलक फोड़ संप्रदाय, ढोलक फोड़ फोड़ के गाते हैं हरे राम 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 राम, ये ढोलक फोड़, और भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं तो फोड़ते रहेंगे ढोलक मृदंग फोड़ ताल तोड़ संप्रदाय, नाम दिया ताल तोड़ संप्रदाय। लेकिन सच्चाई में ताल तोड़ संप्रदाय में कई जगह कई प्रकार के नाम है, आप वहां जाएंगे पूरी जाएंगे तो वहां पर भी नाम बदल दिया। उसमें बोलते हैं क्या बोलते हैं हरिदास ठाकुर समाधि में बोलते रहते हैं जब जपो हरे कृष्णा हरे राम निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम, बोले ये मंत्र दिया। लेकिन ये आप घबरा जाएंगे, ये सभी तो भगवान के मंत्र हैं, तो किस मंत्र का पालन करें? तो हमें उसका पालन करना है जो हमारे संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने दिया। चेतन महाप्रभु ने हमको दिया हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कोई लोग इस पे भी तर्क करते हैं चेतन महाप्रभु ही तो गड़बड़ कर दिए सारा बदल दिए, पहले तो हरे राम ही था, इस पे भी बहस करते हैं। तो आपको बताएं कलि संतरण उपनिषद चेतन महाप्रभु ने नहीं लिखा, वेद व्यास जी ने लिखा 5000 साल पहले। तो फिर कलि संतरण उपनिषद की प्रतिलिपियां कैसे बदल गई? एक गौड़ीय वैष्णव का एक हरिनाम महिमा करके एक अध्याय है, हरिनाम महिमा करके एक पुस्तक है, उस हरिनाम पुस्तक में खुद ही भक्ति सिद्धांत महाराज का वचन है लिखा हुआ कि वेंकटेश प्रेस मुंबई की वेंकटेश प्रेस ने ये सारी प्रतिलिपियां बदल दी क्योंकि उनको दुष्प्रचार करना था उल्टे मंत्रों का। जैसे समझ में आया, मैंने अपनी प्रेस खोली, मैं पैसे वाला व्यक्ति हूं, मैंने खुद ही शोधन कर दिया बदल दिया परिवर्तन। लेकिन इससे कलि संतरण उपनिषद की कुछ प्रतिलिपियां आज भी कलकत्ता के अंदर छुपा के रखी हैं, जिसमें हरे कृष्ण से मंत्र शुरू होता है कलि संतरण उपनिषद के अंदर ही। लेकिन वेंकटेश प्रेस ने जब ये फर्स्ट प्रतिलिपि निकाली तब से ये उल्टा कर दिया, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे तरह से लोगों ने बड़ा दुष्प्रचार किया है। लेकिन चैतन्य मंगल के अंदर कहा गया है कलयुग धर्म है नाम संकीर्तन, कलयुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन, चार युग चार ही धर्म जीवेर कारण, हर युग में एक एक जीवन का कारण होता है, हर युग का एक एक मंत्र है। किसी और युग का मंत्र यहां करेंगे आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, हरे कृष्ण ही करना पड़ेगा। और एक बड़ी अच्छी बात बता दूं मैं आपको, सनत कुमार संहिता के अंदर ये भी भक्ति सिद्धांत महाराज ने दिया, सनत कुमार संहिता के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र के सीक्वेंस को बताया गया कैसे लेना है। 16 नाम तो लेने हैं, 16 नाम, लेकिन कैसे लेने हैं बताया सीक्वेंस, ये मंत्र सीक्वेंस बताएगा। अब देखिए यहां संस्कृत का इस्तेमाल हुआ है, हरे कृष्णो द्विराव्रतो द्विराव्रतो, हरे कृष्णो द्विराव्रतो, कृष्णो का मतलब होता है द्विवचन। जब आप पढ़ेंगे ना एक वचन द्विवचन बहुवचन तो रामे रामो रामा ऐसे है ना, रामे रामो रामा है ना, और जब संबोधन करेंगे तो रामे राम का ही रामे हो जाएगा, ऐसी हरा का संबोधन हरे हो गया। और हरो जो द्विवचन में इसका मतलब दो बार आएगा, हरे कृष्णो द्वि आवर्तो, दो बार बोलना है हरे कृष्ण ये कहां लिखा है सनत कुमार संहिता में। फिर क्या बोलना है कृष्ण तदत्र तथा हरे, और फिर दो बार हरे हरे बोलना, हरे कृष्ण फिर कृष्ण तदरक, फिर दो बार कृष्ण बोलना है कृष्ण कृष्ण तथा हरे, फिर दो बार हरे बोलना हरे हरे, फिर लिखा हरे राम फिर दो बार हरे राम बोलना हरे राम तथा राम 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 तथा तद्रक हरे पुनः फिर हरे हरे। ये पूरा सीक्वेंस दिया कहां पर सनत कुमार संहिता के अंदर कि हरे कृष्णो द्वि आवर्तो, जो भी बात बोलेंगे वो दो बार बोलनी है, हरे कृष्ण तब फिर कृष्ण तद्रक फिर तथा हरे फिर हरे राम तथा हरे, ये सीक्वेंस दिया है सनत कुमार संहिता। अब आप बताओ कि शास्त्र में लिखा हुआ हरे राम, ये कोई ये थोड़ी चेतन महाप्रभु आए उन्होंने हरे कृष्ण दे दिया, उससे पहले तो ओम नमो भगवते श्री कृष्ण शरणम ममा, हर युग का एक एक मंत्र है। एक दिन मैं एक हॉस्पिटल में क्लास दे रहा था तो वहां पे डॉक्टर बात को समझ जाते हैं, शायद आप भी समझेंगे। पहले जमाने में जब बूढ़े बुजुर्ग थे संसार में सबसे बड़ा एंटीबायोटिक आया था पेनिसिलिन इंजेक्शन, पेनिसिलिन लगा दो तुरंत आदमी ठीक हो जाता था। लेकिन आज पेनिसिलिन की बोतल पिला दोगे ना बीमारी नहीं जाने वाली है, असर होगा बहुत हल्का हल्का, लेकिन अगर तुरंत ठीक करना है तो एमोक्सिसिलिन लगाना पड़ता है। तो बोलते हैं क्या है ये, बोले ये थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है। तो कोई एक युग का मंत्र होगा लेकिन वो कलयुग में काम नहीं करेगा, कलयुग में थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक काम करेगा, पेनिसिलिन काम नहीं करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलोगे फर्क पड़ेगा, उतना नहीं पड़ेगा, कली कलमश नाशनम नहीं होगा। वो करना है तो एमोक्सिसिलिन एक गोली लगाओ, अरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। तुरंत दिव मुक्त हो जाएगा सारे अनर्थों से, बीमारियों से, जितना भी हमें अविद्या के छाले हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं, हम में मीठा इसलिए नहीं लगता क्योंकि अविद्या के छाले हैं, अनर्थ भरे हुए हैं, इसलिए मीठा नहीं लग रहा है। वरना ये एमोक्सिसिलिन इंजेक्शन है, महंगा है, ये लग गया बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी। चेतन मंगल के अंदर आया है, कहते हैं प्रभु बोले कही लंगा यही महामंत्र, और कोई मंत्र नहीं करना, यही करना, महाप्रभु का आदेश है। गौरनिताई की पूजा करते हैं, नाम उल्टा उल्टा लेते हैं, कोई कोई मंत्र, कोई कुछ मंत्र, सब जगह गौरनिताई आपको मिलेंगे, कलकत्ता में, वृंदावन में, लेकिन मंत्र कुछ कुछ चल रहा है। यहां जोर देके बोला चेतन मंगल में, प्रभु बोले कही लंगा यही महामंत्र इहा जपे गिया सब करिया निर्बंध। चेतन महाप्रभु ने कहा यही मंत्र जपना है, और कैसे गिया निर्बंध, इसको लगातार जपना है और गिन के जपना है, गिन के संख्या पूर्वक नाम जप करी, संख्या पूर्वक करना है। लोग बोलते हैं हम क्यों करें 16 माला, हम तो अनगिनत करेंगे, नहीं, चेतन महाप्रभु का आदेश है, इसको करना है। या हईते सर्व सिद्धि, और यही करने से सब सिद्धि मिलेगी, हई वे सवार, जो भी चाहते वो मिल जाएगा, सर्व क्षण बल इथे विधे नहीं हार, और कोई विधि नहीं है इसके अलावा। कई लोग हरे कृष्ण जपते रहे और वृंदावन में जाकर, राधा कुंड पे जाकर, अनेक जगहों पे जाकर बाबा और लोगों से पूछते हैं, बाबा जी कोई रहस्य बताइए हरि नाम का, कोई रहस्य बताइए। एक बार एक व्यक्ति चला गया था हिजलेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का डिसाइपल वृंदावन, और जाकर के बोला कि हमें बताइए कोई रहस्य, और बाबा जी बोले आपने कहाँ से दीक्षा ली, बोले हमने इस्कॉन से लिया, कह रहे वो प्रभुपाद जी से ज्यादा और कौन रहस्य बता सकता है संसार में, पूरे विश्व को रहस्य बता दिए और तुम हमसे पूछने आओ, जाओ उनके शरणागत हो जाओ प्रभुपाद जी के, अपने गुरु महाराज के, और जब करो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। आप देखिए कोई भी और मंत्र भी लिया हो आपने किसी गुरु से, लेकिन अगर आप हरि नाम नहीं लेंगे ना, उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसा राधा तंत्र में श्रीमती राधा रानी वर्णन करती हैं, हरि नामानि बिना पुत्रे दीक्षा चा विफले भवे। अगर किसी और मंत्र की दीक्षा भी ले ली आपने, ब्राह्मण दीक्षा या कोई दीक्षा, और हरि नाम छोड़ दिया आपने करना, तो हर राधा तंत्र में लिखा है हरि नामानि बिना पुत्रे, हे पुत्र बिना हरि नाम के दीक्षा चा विफल भवेत, दीक्षा ही विफल हो जाती है। बोलो दीक्षा लेके हरि नाम जपना नहीं है, व्यक्ति कह रहा हम तो दीक्षित भक्त है, टाइम नहीं मिलता, तो दीक्षा विफल हो गई उसकी। राधा तंत्र में लिखा दीक्षा चा विफल भवेत, अब कोई मंत्र कर ले वो चाहे, उसका फल ही नहीं मिलने वाला। किसी मंत्र में दीक्षा हो, गायत्री परिवार से हो, कहीं से भी हो, हरिनाम तो कलयुग का है, ये दवाई औषधि तो लेनी पड़ेगी। एन छे औषधि माया नासी बारी लागे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। जीव गोस्वामी ने बड़ी सुंदर व्याख्यान करी है, समय है प्रभु जी हमारे पास 5 मिनट, तो जीव गोस्वामी ने हरे कृष्ण राम 3 शब्द जो है इस मंत्र के उनकी व्याख्यान करी, तो दो सुन लेते हैं, जब करने में हमें मदद मिलेगी आप सबके प्रयास से। हरे शब्द का अर्थ क्या है, तो जीव गोस्वामी कहते हैं अपनी व्याख्यान में, सर्व चेतो हरे कृष्णस्तस्य चित्तम हरतस्यो वेदग्धि सार विस्तारे तो राधा हरा मतः। क्या मतलब है, सर्व चेतो हरा कृष्णस्तस्य, जो श्रीमती राधा रानी कृष्ण के चित्त को हर लेती हैं, चित्तम हरतस्यो, जो राधा रानी कृष्ण का चित्त हर लेती हैं, उनको विधि पूर्वक यहां पर हरा कहा गया है, राधा हरा मतहा, उसको मति से हरा कहा गया है, और संबोधन में हरे कहा गया है, तो ये हरा मतलब श्रीमती राधा रानी है। जी गोस्वामी वर्णन करते हैं और आगे कहते हैं कृष्ण का मतलब क्या है, कृष्णति स्वई लावण्य मुरली क्लीन स्वाहिने श्री राधा मोहन गुणा अलंकृत कृष्ण ईर्यते। कर्षति, कर्षति मतलब आकर्षण, सर्व आकर्षण करती इति कृष्ण, कृष्ण का मतलब है जो सभी गोपियों के हृदय को चुराने वाले कृष्ण है, उनका स्मरण, और कोई कृष्ण नहीं, कोई गीता बोलने वाले, महाभारत वाले, द्वारकाधीश वाले, कोई कृष्ण नहीं, सिर्फ वो कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के प्रिय हैं, वो कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं। सभी भगवान के स्वरूप हैं, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मना शिक्षा के 4th वर्ष में कहते हैं कि आपसे कोई पूछे आप किसका भजन करते हो, तो बोलना चाहिए मैं कृष्ण का भजन करता हूं, नहीं ये बोलना चाहिए मैं राधा कृष्ण का भजन करता हूं, नहीं वो कहते बोलना चाहिए व्रज राधा कृष्णा। इसीलिए हम सुबह तुलसी पूजा में गाते हैं, क्या नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी। फिर आगे क्या कहते हैं, व्रज राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाष। रोज सुबह अभिलाषा व्यक्त करते हैं व्रज राधा कृष्ण। तो रघुनाथ दास गोस्वामी मना शिक्षा के चौथे वर्ष में कहते हैं व्रज राधा कृष्ण, राधा कृष्ण नहीं व्रज राधा कृष्ण। तो और जितने भी विस्तार है धीरे धीरे जब आप प्रगति करेंगे तो आप समझेंगे व्रज राधा कृष्ण गोलोक वृंदावन की बात हो रही है और किसी की बात नहीं है। यहां तक लिखा है विष्णु लक्ष्मी पतिम रतिम भी नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी पति के प्रति भी। दीपावली पे लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पति रतिम भी नहीं होना चाहिए। ये ऊंचा बहुत मन मन को जब मारेंगे 100 जूते भक्ति विनोद ठाकुर बोलते तब जाकर ये कृष्ण में आकर्षण प्राप्त करेगा, पढ़ना बड़ा मुश्किल है। ये जीव गोस्वामी ने कहा भुवन को मोहित करने वाले कृष्ण अपने लावण्य अपने सुंदर रूप से मुरली से श्री राधा को भी आकर्षित करते हैं, वो भगवान कृष्ण की चर्चा इस हरे कृष्ण में हुई है। अब प्रॉब्लम आती है राम में, प्रॉब्लम नहीं है हमने बना लिए, वैसे तो राम आनंद देने वाले हैं पर प्रॉब्लम हमने बना लिए। राम में कहते हैं बलराम, राम में कहते हैं रामचंद्र, राम में कहते हैं राधिका मधुसूदन, राम में कहते हैं राधिका रमण, रमण करने वाले राम, कौन से राम? तो जीव गोस्वामी हमें वर्णन कर रहे हैं, वो कहते हैं रमेते भजते चेतहा परमा आनंद वारिधो अत्रेति कथितो रामः श्याम सुंदर विग्रह। ये राम और कोई नहीं है, श्याम सुंदर का विग्रह है। राम मतलब रमेति भजते, भजन करने में जो आनंद देने वाले भगवान है, रिजर्वियर ऑफ ऑल प्लेजर दैट इज राम, राम आनंद वाले भगवान। तो इसमें आप चाहे बलराम सोचे चाहे राम सोचे रामचंद्र सोचे सभी तो आनंद देने वाले हैं, तो इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। एक बार अनुरधि अरुंधति माता जी को प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा था 9 सितंबर 1969 में, उसमें भी प्रभुपाद जी से उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि हम राम को क्या समझे, बलराम रामचंद्र या फिर राधिका मधुसूदन। तो प्रभुपाद ने कहा इट कैन बी रामचंद्र, इट कैन बी कृष्ण बलराम, इट कैन बी कृष्णा, क्योंकि सभी विष्णु तत्व हैं, तो आप कोई भी भजेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं किसी और वंश में मत जाओ, रामचंद्र वंश में या किसी और वंश में मत जाओ, एक ही वंश में रहो, कृष्ण वंश में रहो, अच्युत गोत्री बन के रहो। सर्व आकर्षण करता इति कृष्णा, सब सबको रमण कराने वाले भगवान राम, और राम राम कृष्ण को आकर्षित करने वाली श्रीमती राधा रानी हरे, बस इन्हीं तीन में रहो, व्रज राधा कृष्ण के अंदर ही रहो, घूमो आनंद लो। तो एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद हम नाम जप करते वक्त क्या नाम के साथ साथ गुण का या रूप का या लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा स्पेशल प्रयास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई वृंदावन की लीला याद भी आ रही है तो यह अपराध नहीं है, क्योंकि लक्ष्य तो यही है लीला याद करना। आप वृंदावन गए थे घूमने और आपको वृंदावन याद आ रहा है, श्याम कुंड राधा कुंड याद आ रहा है और जप कर रहे हो, तो ये अच्छी स्थिति है, आप याद कर सकते हो, आपको स्मरण करने को मना नहीं किया। लेकिन हाँ आप बैठ जाओ माला लेके कि आज तो ना आज आज गोवर्धन परिक्रमा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, ये भी नहीं करना है। आज वृंदावन परिक्रमा, हरे कृष्ण आज जगन्नाथपुरी परिक्रमा, ये नहीं। लेकिन हाँ अगर जप करते वक्त आपको परिक्रमा करी हुई स्मरण आती है तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये अच्छा लक्ष्य है, स्मरण कर आ जाए तो गलत नहीं है। गुरु का स्मरण आ जाए, प्रभुपाद का स्मरण आ जाए, या भगवान के विग्रह का स्मरण आ जाए, या किसी वृंदावन यात्रा का स्मरण आ जाए, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। फिर प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद कीर्तन का क्या मतलब है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कीर्तन का मतलब है प्रवचन और कीर्तन, मतलब जब कथा करने बैठो तो 5 मिनट कीर्तन, भगवान के नाम का जप और फिर भगवान की कथा, ये भी कीर्तन ही है। और जब सबके साथ बैठ करके करो तो संग में बैठा कीर्तन, संकीर्तन है ना। तो संकीर्तन यज्ञ का मतलब ही जो ये हो रहा है, ये टाइम नहीं जा रहा है कि हम फिलॉसफी सीख रहे हैं, संकीर्तन हो रहा है, भगवान राम भगवान कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी का गुणगान गाया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी ने ये उपेंद्र को चिट्ठी लिखी थी। और एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा आप प्रभुपाद क्वालिटी ऑफ चैंटिंग बोलते हैं बढ़ाना चाहिए, तो क्वालिटी ऑफ चैंटिंग का क्या मतलब है? क्वालिटी ऑफ चैंटिंग, लोग बोलते हैं क्वांटिटी तो होती है 16 माला लेकिन मन नहीं लगता तो क्या करें? तो प्रभुपाद जी ने कहा क्वालिटी ऑफ चैंटिंग का मतलब ये नहीं है कि मन लगे या ना लगे। प्रभुपाद ने लेटर लिखा है राय राम प्रभु को 10 मई 1968 को, लेटर है प्रभुपाद जी का, उसमें वो कहते हैं क्वालिटी ऑफ चैंटिंग मीन्स ट्राई टू अवॉइड 10 ऑफेंसेस, 10 नाम अपराधों से बचकर के जप करोगे तो ये शुद्ध जप हो जाएगा, ये क्वालिटी जप है। जप का मतलब ये नहीं कि आज मेरा मन बहुत जप में था तो ये क्वालिटी हो गया, और आज मेरा मन भाग रहा था तो ये डिसक्वालिटी, मतलब ये क्वालिटी नहीं हुआ। अच्छे प्रकार का अच्छे शुद्ध जप वो है जब हम जप करने के बाद किसी से दुर्व्यवहार ना करें, किसी वैष्णव की निंदा ना करें, ब्रह्मा विष्णु के, विष्णु को ब्रह्मा शिव को भगवान के समान ना समझें, गुरु को साधारण मनुष्य ना समझें, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश ना करें, हरिनाम महिमा को काल्पनिक ना समझें। ये जो जप के बाद का जो हम 24 घंटे गुजारने में से 2 घंटे जप किया, जो 22 घंटे हम करते हैं, अगर वो सुधर जाए तो ये 2 घंटे क्वालिटी जपा है। ये प्रभुपाद प्रभुपाद जी ने बोला। तो एक बार प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद मुझे जप करते वक्त लाल रंग की रोशनी दिखाई देती है। प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, आप जप करते रहिए, रोशनी धीरे धीरे चली जाएगी। तो इसलिए हमें कई प्रकार के विचार आते हैं, हम किस प्रकार से जप करें किस प्रकार से नहीं करें। तो श्रील प्रभुपाद एक बार एक पुराने से कालीन पर बैठे थे, प्रभुपाद लीलामृत में आता है, और एक भक्त ने बड़ी आत्मीयता से शांति से प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद आप तो इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं, अब हम किसके साथ बैठ के हरे कृष्ण जप करेंगे, क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं और हम आपका संग नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा मेरे गुरु महाराज और मेरे गुरु महाराज के पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, मैं दोनों को यहाँ आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ। कहा इसका मतलब? भक्ति विनोद ठाकुर तो नित्य लीला प्रवेश बहुत साल पहले हो गए, भक्ति सिद्धांत महाराज तो आपके विदेश आने से पहले हो गए, आप कहाँ छोड़े जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जो ये फोटोग्राफ है ना लैमिनेशन, इसको मैं छोड़े जा रहा हूँ। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा मैं अपना फोटो छोड़े जा रहा हूँ, ये विनम्रता है प्रभुपाद जी, वरना ये भी बोल सकते मेरा फोटो तो है आप इसे एसोसिएट कर लो, मुझ में और मेरे फोटो में कोई भेद नहीं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं अपने गुरु महाराज को और अपने गुरु महाराज के पिता श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर को आप लोगों के संग के लिए छोड़े जा रहा हूं, आप इन दोनों का संग करो, सामने फोटो रख लो दोनों का, शट गोस्वामी का तुलसी रख लो और बैठ करके जप करो, तो आपको मेरा या मेरे गुरु परंपरा का संग प्राप्त होगा। क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं जप करने का या संग करने का मतलब ये नहीं मैं और आप बैठ के संग कर रहे हैं। अभी हरिनाम संकीर्तन का पूरा विश्व ने वीक बनाया, पूरे हफ्ते, तो किसी ने ऑस्ट्रेलिया में गाया, किसी ने अमेरिका में गाया, किसी ने यूरोप में, किसी ने नोएडा में, किसी ने गाजियाबाद में, किसी ने नजफगढ़ में, किसी ने द्वारका में, किसी ने फरीदाबाद, गाजियाबाद, साहिबाबाद, गुड़गांव। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जब आप हरे कृष्ण जप करते हैं तो इसकी ध्वनि ऐसे जाती है ऊपर, चीरती हुई आकाश को, भगवान श्री कृष्ण के धाम तक। और जब सारे लोग जप करते हैं सबका जप इकट्ठा आकर्षण होता है, जैसे एक जप हुआ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सबका जप यहाँ जाके इकट्ठा हो गया और सबकी प्रार्थना इकट्ठी पहुंचेगी भगवान के धाम। कहेंगे अच्छा ये प्रभुपाद के अन्यायियों का बड़ा सा गोला हरे कृष्ण का यहाँ चला आ रहा है ऐसे। तो उन्होंने कहा हम संग कर रहे हैं लेकिन ध्वनि रूप में कर रहे हैं, है ना, जैसे हम लोग आजकल स्काइप पे कॉलिंग करते हैं ना, ऐसे ही आप अपने गुरु से हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा संपर्क स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वो शुद्ध नाम जप कर रहे हैं और आप भी शुद्ध नाम जप करने का प्रयास कर रहे हैं, आपका संपर्क स्थापित हो जाएगा। कई बार हमें लगता है कि गुरु को कैसे पता चल जाता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, पता है गुरु महाराज को पता चल गया, मेरे गुरु महाराज को पता चल गया, कैसे पता चलता है? क्योंकि भगवान उनके हृदय में भी बैठे हैं, आपके हृदय में भी बैठे हैं, और वो दोनों एक ही भगवान है। जब भगवान चाहते हैं कि इस व्यक्ति को गाइड करना है तो वो उस व्यक्ति के हृदय से जिसकी ये बात सुनने को तैयार है उसके हृदय में रिवील कर देते हैं बात को, कि इसके मन में ये चल रहा है ये बता दो इसको, ये अब ये बोलेंगे ना तो हम मान लेंगे, तो ये भगवान ही बताते हैं अंदर। तो ऐसे ही जब हरे कृष्ण जब आप करोगे यहाँ हृदय में भगवान है, और जब गुरु करेंगे उनके भी हृदय में भगवान है, तो वो भगवान बता देंगे कि कौन कौन भक्त अच्छा जप कर रहा है और भगवान उनके गुरु से संपर्क जुड़वा देंगे, तो आपको गुरु का संग प्राप्त हो जाएगा। वपु रूप में हो ना हो लेकिन वाणी रूप में हरे कृष्ण मंत्र रूप में आपको संग प्राप्त हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जप करते हुए बड़ा ध्यान देना चाहिए 5 चीजों का, 5 एज ऑफ चैंटिंग ये बताए गए हैं, इनको हिंदी में 5 जप के आ बताए हैं। कहते हैं पहला है अटेंशन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण हिंदी में। जप के प्रति आकर्षण होने का क्या मतलब है? कि बस मैं कृष्ण का नाम जपूंगा बाकी कुछ नहीं जपूंगा, बस एक ही मंत्र जपूंगा और कोई इसमें डाइल्यूशन नहीं करूंगा, कोई और मंत्र का एडिशन नहीं करूंगा। तो आकर्षण पहला ए है, अगर हम जप के प्रति आकर्षित हैं, हमें जप के प्रति निष्ठा है 16 माला के प्रति, 16 से अधिक के प्रति, तो हम सही। मैं हैरान हो गया प्रभुपाद जी के लेटर पढ़ के। कई माताओं ने, प्रभुओं ने लिखा है प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद हम 64 राउंड्स करने लगे हैं। तो प्रभुपाद ने उनको लेटर में रिप्लाई लिखा है, कम मत करना, अब कम मत करना, क्योंकि हरि नाम एक बार जिस स्थिति में पहुंच जाए उससे अगर आपने घटाया तो अपराध लगता है। और कई बार कई लोग क्या करते हैं, जप को अपनी मर्जी से बढ़ा लेते हैं, अपनी मर्जी से घटा लेते हैं। एक्स्ट्रा राउंड करना वो संख्या में नहीं आता, लेकिन आपने एक बार संख्या निर्धारित कर ली कि अब मैं 25 करूंगा, तो आप 24 नहीं कर सकते, अपराध हो जाएगा गुरु के प्रति। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 64 करना लगे, बहुत अच्छी बात है, मैं प्रसन्न हूं, अब 64 से कम मत करना, ये प्रभुपाद जी ने लिखा। तो कई प्रभुपाद के शिष्य 64 भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है, 32 भी कर रहे थे, 25 भी कर रहे थे। तो मिनिमम 16 माला बोला है, 16 हमारा टारगेट नहीं है, हम बढ़ा भी सकते संख्या को, और जब गुरु मिले तो उनको बता भी सकते हैं अब मैं 25 माला करता हूं, गुरु जी कहेंगे बहुत अच्छी बात है, अब घटाना मत, है ना, प्रभुपाद जी का ही आदेश। तो प्रभुपाद जी बोलते कई बार जब करते करते लोग वो क्लिप का इस्तेमाल करते हैं, जब फोन आता है तो बड़ा जरूरी फोन है, उनके बिना सृष्टि ब्रह्मांड में आग लग जाएगी, इसलिए फोन उठाना जरूरी है। तो जब माला से निकाल देते हैं, क्लिप लगा देते हैं, और क्या आग लग रही थी, प्रसाद पा रहे होते हैं, समोसे खाने के लिए वो जब को छोड़ देते हैं और उसमें क्लिप लगा देते हैं, समोसे खा के हाथ धो के क्लिप हटाते हैं, फिर वहीं से आधा मंत्र शुरू कर देते हैं, हरे कृष्ण, कह रहे अब एक माला हो गई। अगर माला को बीच में आपने बाहर निकाल दिया बीड बैग से, क्लिप लगा के रोक दिया, तो ये मंत्र पूरा नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा है जप, लेकिन 16 माला के जप संख्या में ये माला जप नहीं काउंट होता है, है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि जब करते करते निकाल दिया और फिर उसमें क्लिप लगा दिया या बाहर निकाल के रख दिया, फिर बातचीत कर ली, खाना पीना खा लिया, फिर वहीं से पकड़ा, फिर आधा माला कंप्लीट कर दिया। तो अब लोग बोलते हैं आधा माला अगर हो गया है तो क्या करें, तो बात करते करते पूरा कर लो और इसको काउंट मत करो, नया माला जब करो, दोबारा से एक माला एडिशनल करो। तो लोग बड़े टेंशन में आते, प्रभु जी आओ जाओ, बोलो ऐसा हो गया, पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो गया, लाखों का हरि नाम ही तो जप रहे हो एक्स्ट्रा, फोन आ गया बीच में बोल दिया, अब क्या करें, अरे फिर आज पूरी कर लो इसको माला को। कई लोग आधी माला होकर अगर बात हो जाती है तो छोड़ ही दे, अरे करनी नहीं, बर्बाद हो गई माला, अरे आधा तो था, आधा पूरा कर लेते। लेकिन इतना ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेट बना रखा है भगवान के नाम जब को, अरे हरि नाम ले लो, जब बात कर ली तो दो तीन बार और कर लो बात, मन पूरा कर लो बात करने का, फिर इसको काउंट मत करो, फिर एक माला बिना बात के दोबारा कर लेना ध्यान से, इस प्रकार से। तो आकर्षण होना चाहिए। दूसरा है अवधान, आकर्षण के बाद अवधान, अट्रैक्शन के बाद अटेंशन। जब की दूसरी विधि है, पहले तो आकर्षण होता है, तो आप लोग जप माला लेते हैं, नई नई बीड बैग लेते हैं कलरफुल, और फिर ध्यान से जप करने के लिए वरिष्ठ वैष्णव बोलते हैं, प्रभु जी बोलते हैं कि ध्यान से जप करो, ध्यान से जप करो, ध्यान पूर्वक जप करो। तो ये दूसरी सीढ़ी है अटेंशन, अवधान। इसमें व्यक्ति को मन को एकला विचार, बस एक ही विचार होना चाहिए कि मुझे आज हरे कृष्ण महामंत्र में कम से कम एक मन का तो ध्यान से सुनना है, एक मन का माला नहीं, फिर एक मन के बाद दो मन के, तीन मन के, धीरे धीरे एक माला, फिर दो माला ध्यान से, फिर 16 माला, ये अटेंशन विधि है। तीसरा है अवधान के बाद अतल्लीनता, एब्जॉर्प्शन इन दी चैंटिंग ऑफ दी होली नेम, अतल्लीनता, तल्लीनता, जैसे कि जब प्रसाद पाते हैं तो कितने तल्लीन हो जाते हैं, पड़ोस में कौन बैठा है वो हरे कृष्ण दो बार बोल चुका है, अरे प्रभु जी हमने आपको हरे कृष्ण बोला आपने देखा नहीं, करा रहे वो प्रसाद में थोड़ा बिजी था ना, या सो रहे हो तो कितने तल्लीनता से सो जाते हैं। तो अतल्लीनता बताया तीसरी सीढ़ी है कि जिसमें आदमी इतना भजन में चला जाए उसको पता ही नहीं चले सामने से कौन गुजर गया, अतल्लीनता। चौथा है हरि नाम में आसक्ति हो जाना, अटैचमेंट इन दी होली नेम, आसक्ति हो जाना कि अगर शरीर के टुकड़े भी हो जाए तब भी हरि नाम ना जाए, जैसे श्री हरिदास ठाकुर, खंड खंड जाए देही जाए यदि प्राण तब तो ना बदने छोड़े हरि नाम, मैं हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। हमको कोई बोले शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम कहेंगे लो माला लो टुकड़े टुकड़े करो, हम जा रहे हैं भाई हरे कृष्ण, हम कितने निष्ठुर हैं भक्ति में, हमको कोई प्रेम नहीं, आसक्ति नहीं है। फिर आसक्ति के बाद में अंतिम सीढ़ी है अफेक्शन, जिसको कहते हैं अनुराग, बोलते हैं ना राग अनुगा भक्ति अनुराग भक्ति, अनुराग भक्ति ऐसी आ जाएगी, फिर हरिदास ठाकुर को अनुराग प्राप्त हो गया तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे तुम्हारी तबीयत कैसी है, कहते प्रभु सब कुछ ठीक है, बस नाम जप में है ना पूरा नहीं हो पा रही संख्या। कितनी संख्या कर रहे हो, 192 माला, 192 माला रोज, संख्या पूरी नहीं हो रही है, ये तकलीफ है। तो उन्होंने कहा ये तकलीफ नहीं है, अब तुम्हारी ये स्थिति आ चुकी है कि तुम सोते भी हो तो तुम्हारे मुंह से नाम निकलता है, छोड़ दो माला को, अब तुम्हारे को जरूरत नहीं, नहीं शरीर छूट जाए, खंड खंड जाए देही, जाए यदि प्राण, तब भी छोड़ना नहीं है। तो हरि नाम की इतनी जब आकर्षण से स्थिति अनुराग तक पहुंच जाए, तब जाकर के हमारा शरीर छूटे। तो हमें कोशिश करनी है। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, फिनिश द बिजनेस इन दिस लाइफ, इस ही जीवन काल में इस पूरी विधि को समाप्त कर दो और अनुराग उत्पन्न कर लो भगवान से। तो पहला है क्या? आकर्षण। दूसरा है अवधान। तीसरा है अतल्लीनता। चौथा है आसक्ति। पांचवा है अनुराग। ये पांच सीढ़ी हैं हरि नाम के ऊपर तक जाने के लिए। तो कोशिश करिए हरि नाम अच्छे से ले हम सब मिलकर के, और आप लोग मुझ पर भी थोड़ी कृपा करें, मेरा भी हरि नाम अच्छे से हो, क्योंकि ये तो मैंने जो पढ़ा वो बोल दिया तोते की तरह, लेकिन सही मायने में हरि नाम को अच्छा अनुराग लाना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी ने एक बात और बड़ी अच्छी बताई है, कहते हैं जैसे आप 7 मिनट जप करते हो, उसके बीच में माला छोड़ देते हैं कई लोग, या ध्यान भटका लेते हैं। कभी पुजारी को देखा है आपने ऑल्टर में मंगला आरती में, जैसे शंख कर रहा है, 25 मिनट आरती चलती है, शंख करते करते कह रहा है एक मिनट फोन उठा के आऊं, शंख रख के जाए, हाँ बोलो क्या हुआ क्या, अच्छा अच्छा, फिर रख के फिर कपड़ा करने लग जाए, वस्त्र इदम वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र समर्पण कर, फिर फोन आ जाए, हाँ बोलो क्या हुआ, अरे हाँ हाँ प्रसाद भिजवा देंगे, हाँ शाम को खाया प्रोग्राम, फिर रख के आ जाए, फिर ए शाम चवर सेवा, फिर चवर सेवा शुरू। ऐसे हुआ कभी? 25 मिनट की तल्लीनता से वो पुजारी हिल नहीं सकता। ऐसे ही हरि नाम को बोलते हैं, ये 7 मिनट की एक पूजा, एक आरती 7 मिनट की है, इसमें 16 आरती करनी है आपको दिन में, उसमें 8 आरती अष्टयाम है, इसमें 16 याम है, षोडश, 16 बार करना है ये 7-7 मिनट की, 16 आरती करनी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इसमें एक अंतिम बात आज की, तो मैंने अधिक समय लिया है, एक अंतिम बात यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र में 32 अक्षर हैं, तो नाम जप करते वक्त जरा ध्यान रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये रामा नहीं है, ये कृष्णा नहीं है। तो आचार्य कहते हैं अगर प्रारंभिक अवस्था में सब चलता है, नए लोगों के लिए बोले वेलकम वेलकम, अब छोटा बच्चा है नया नया अभी पैदा हुआ, बोलना सीखा, बेटा नाम क्या है, मेले पापा का नाम लाउल है, 5 साल तक चल जाएगा, 10 साल पर है तो थोड़ा शक होगा, अरे अभी भी बोलता मेले ताता का नाम लाउल है, लेकिन 15 साल का हो गया अभी बोल रहा है तो ऑपरेशन इलाज टेंशन शुरू हो जाएगी, अरे जॉब तक पहुंच गया अभी बोला मेले पापा का नाम लाउल है, तो इसको कौन नौकरी देने वाला है। तो प्रारंभिक अवस्था में आप हरे कृष्णा 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 कीर्तन में बोल रहे हैं, ठीक है भगवान सबको स्वीकार कर, लेकिन 32, ये पद्म पुराण का श्लोक है, 32 अक्षरम मंत्रम षोडश नाम कान्वितम, इसमें 32 अक्षर है। अगर हम कृष्णा या रामा बोलते हैं तो ये 40 अक्षर, क्योंकि एक एक आ का डंडा बड़ा तो 8, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 बढ़ गए 32 में, 8 ऐड किए तो 40 अक्षर मंत्र हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम, तो संकीर्तन में चलता है क्योंकि इसमें से भगवान अनुग्रह, भगवान भावग्राही ना, भाव ले लेते हैं। परंतु जब जप करें तो भक्ति बृहद भागवत महाराज अपने आर्ट ऑफ चैंटिंग सेमिनार में बोलते हैं 32 अक्षर पे बड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम कृष्ण राम इतने पे रोके, रामा रामा या कृष्णा कृष्णा ना करें। तो प्रारंभिक से जब आप परिपक्व अवस्था में जाएं तो अपने 32 अक्षर पे ध्यान दें, इसीलिए पद्म पुराण में कहते हैं 32 अक्षरम मंत्रम, 32 अक्षर का मंत्र है, षोडश नाम कान्वितम, 16 नाम है, प्राजपन वैष्णवम नित्यम, इसको जपना है वैष्णव विधि से नित्यम, तो क्या होगा, राधा कृष्णा स्थलम लभेत, उस व्यक्ति को राधा कृष्ण का स्थल अपने मरने के बाद, अपने शरीर छोड़ने के बाद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा।